यमन में जो किंग होते थे उनको तुब्बा कहा जाता था, और जो उस जमाने का सबसे पहला किंग था उसको तुब्बा अव्वल कहते थे। तुब्बा अव्वल बहुत बड़ा बादशाह था, मुसलमान तो था नहीं, ईमान तो लाया नहीं था, मगर तुब्बा अव्वल का प्लान ये था कि उसने एक बहुत बड़ा लश्कर बनाया। अच्छा, उस लश्कर में उसने प्लान ये किया कि उसके पास 1,13,000 पैदल चलने वाले थे और 1,30,000 के करीब घोड़ा चलाने वाले, घुड़सवार, हॉर्स राइडर। ट्राई टू इमेजिन कितना बड़ा उसका जुलूस था, कितना बड़ा लश्कर था। वो अपने पूरे लश्कर को लेकर उसने पूरी दुनिया को ट्रेवल करने का प्लान किया। अच्छा, वो जिस शहर में जाता सारे शहर के लोग बाहर आ जाते, डर भी जाते, रोब में भी आ जाते कि इतना बड़ा जुलूस लेकर ही आया है, उसका इस्तकबाल भी करते। और हर शहर से वो 10 स्कॉलर्स, उनके 10 उलमा अपने साथ ले जाता। इतना लॉन्ग ट्रिप हो गया कि उसके पास 4,000 उलमा हो गए। आप अंडरस्टैंड करें कि कितने शहरों में वो गया होगा, 4,000 उलमा जमा हो गए। अब वो ट्रैवल करते 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 मक्का पाक पहुंचा। अच्छा, मक्के जब वो एंटर हुआ तो मक्के के लोगों ने कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, कोई उसका इस्तकबाल नहीं किया, और कोई जनाब उसका कोई रोब भी नहीं पड़ा। तो उसने अपने वजीरों को बुलाया कि ये कैसे लोग हैं, ये शहर कैसा शहर है, नोबडी, यू नो, कोई इस्तकबाल भी नहीं हुआ, कोई हमारा रोब भी नहीं है, कोई दबदबा भी नहीं है, टेक केयर भी नहीं किया इन्होंने हमें। तो उसके वजीरों ने बताया कि बात यह है कि ये मक्के वाले जो है ना, इनके पास एक बहुत कमाल की इमारत है जिसको ये काबा कहते हैं, और ये काबे का तवाफ करते हैं। काबे में इन्होंने बुत रखे हुए हैं। आपको याद होगा कि नबी पाक की आमद से पहले काबे में तो बुत थे, तो ये काबे की रिस्पेक्ट करते हैं, बाकी किसी को घास वास नहीं डालते। तो बड़ा कर्रो फर वाला किंग था, इतना बड़ा लश्कर था, उसने कहता अच्छा ऐसी बात है तो मैं काबे को ही गिरा देता हूं, काबा ही डेमोलिश हो जाएगा तो ये किसका तवाफ करेंगे, फिर ये सब मेरे पास आ जाएंगे। तो इसने अभी प्लानिंग की, सिर्फ सोचा, रात उसके सर में सीवियर पेन शुरू हो गया, खतरनाक किस्म का दर्द है सर। उसकी आंखों से, उसके कान से और उसके नाक से पानी निकलने लगा, और वो इतना बदबूदार पानी था कि कोई करीब भी ना बैठ सके, इतना परेशान। अच्छा, लश्कर में डॉक्टर भी थे, डॉक्टर बुलाए गए, तबीब आए, बड़े बड़े इलाज किए, कोई फर्क ना पड़े, 2-3 दिन निकल गए, तकलीफ खत्म ही ना हो। तो एक जो डॉक्टर था, जो सबसे बड़ा डॉक्टर था, उसने कहा देखें ये मामला जो है ना, मुझे आपकी बीमारी का नहीं लग रहा, ये कोई आसमानी मामला है, आप किसी आलिम से पूछिए। तो उन्होंने अपने लश्कर में जो सबसे बड़े आलिम थे उनको बुलाया कि आप चेक करें मामला क्या है। तो उन्होंने कहा ये बताओ कि तुमने कोई गलत ख्याल तो नहीं किया इस शहर के बारे में, यहाँ के रहने वालों के बारे में। उसने कहा हाँ, मैंने तो प्लान किया था कि काबा गिरा दूंगा, यहाँ के मर्दों को कत्ल कर दूंगा, औरतों और बच्चों को कैदी बना लूंगा। तो उन आलिम दीन ने कहा कि नहीं, तुमने गलत किया, तुम्हें नहीं पता कि ये काबा क्या है, इसका मालिक वो खालिक है, वो मालिक है, कि अगर उसके बारे में, काबे के बारे में नेगेटिव सोचोगे तो बर्बाद हो जाओगे, फौरन तौबा कर लो वरना तुम खुद ही बर्बाद हो जाओगे। कहा अच्छा ऐसी बात है। तुब्बा ने तौबा कर ली, जैसे ही तौबा की तो उसका सारा दर्द खत्म हो गया, वो फ्रेश हो गया, उसकी तबीयत ठीक हो गई। तो अब उसने दीन इब्राहिमी इख्तियार कर लिया, अल्लाह पर ईमान लाया, और उस जमाने में हजरत इब्राहिम का दीन चल रहा था, अभी नबी पाक तो आए नहीं थे। उसने दीन इब्राहिमी एक्सेप्ट किया और उसने अल्लाह पर ईमान ले आया। अच्छा, अब वहां से फिर लश्कर आगे चला, और चलते 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 एक ऐसी बस्ती में पहुंचा जहां खजूर के दरख्त थे, बड़ी खुशगवार वादी थी, और वहां उन्होंने पड़ाव डाला। अच्छा, उस लश्कर में जो उलमा थे उन्होंने अपनी किताबें निकाली, उनके पास आसमानी किताबें थी, वो पढ़ते गए और कहने लगे ये तो वही जगह है जहां हमारी किताबें बताती हैं जहां अल्लाह के आखिरी नबी हिजरत करके आएंगे। यानी इसका मतलब वो ढूंढते ढूंढते आज के मदीने में पहुंच गए थे, जिसको आज हम मदीना कहते हैं ना, ये वहां पहुंच गए थे। तो 400 उलमा ने कहा कि भाई हम तो ये जगह छोड़ के नहीं जाएंगे, पता नहीं कब नबी पाक आ जाएं, अब हमने यहीं ठहरना है, अगर तुब्बा रहने देगा तो ठीक है, बेशक हमारी बोटी बोटी कर दे, हमने ये शहर छोड़ के नहीं जाना। इतला तुब्बा को भी मिल गई। तुब्बा ने बुलाया उलमा को कि क्या मसला है। तो कहा देखिए हजरत, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है, हमारा हिसाब किताब बताता है कि अल्लाह के आखिरी नबी इसी बस्ती में आएंगे, हम इस बस्ती को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम उनके खादिम बनकर रहेंगे, उनके उम्मती बनेंगे, उन पर ईमान लाएंगे। अच्छा, तुब्बा भी 2-4 दिन पहले ही या कुछ दिनों पहले ही मक्के की ताजीम समझ चुका था, अल्लाह पर ईमान ला चुका था। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी रुक जाता हूं। उसने क्या किया, 400 उलमा के लिए 400 घर बनाए, उन 400 उलमा की शादियां करवाई, उनको खूब मालो दौलत भी दिया। एक साल तुब्बा खुद भी वहीं रहा, एक साल के बाद देखा कि नबी पाक तो नहीं आए, तो अबू तुब्बा ने एक कमाल का खत लिखा, सुनिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दुनिया का अनोखा खत है कि उसके लिए लिखा जा रहा है जो अभी दुनिया में आए नहीं है। और किस इश्क वाली जबान में तुब्बा बादशाह ने वो खत लिखा, उसने लिखा कि उस अल्लाह के नाम से शुरू जो आलमीन का रब है, मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तुब्बा अव्वल हिमियरी सलाम पेश करता हूँ, और मैं आका अली सलातुस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि हुजूर, अगर मैंने आपका ज़माना पा लिया तो मैं आपकी खिदमत करूँगा, आप पर ईमान लाऊंगा, आपकी सुन्नत पर अमल करूँगा, जो आप किताब लेकर आएंगे मैं उस पर भी अमल करूँगा, और हुजूर अगर मैं फिर भी आपका ज़माना ना पा सकूँ तो मुझे अपनी ग़ुलामी में कबूल फरमाइए और क़यामत के दिन मेरी शफ़ात फरमाइएगा, मुझे भूल ना जाइएगा। बड़ा कमाल का इश्क वाला उसने ख़त लिखा, उस ख़त को उसने सील किया गोल्डन स्टैम्प लगा के। अच्छा, एक और मकान बनाया उसने, और जो उस वक्त के सबसे बड़े आलिम थे उनको वो लेटर भी दिया और कहा जब आप नबी पाक से अगर आपकी मुलाकात हो जाए ना तो मेरा ख़त उन्हें दीजिएगा, ये मकान भी उन्हें गिफ्ट कर दीजिएगा, और अगर ना हो तो आप अपने बच्चे को कहिएगा, आपका इंतकाल होने लगे तो उसको ये लेटर दीजिएगा, उसको कहिएगा वो अपनी औलाद को दे ताकि किसी तरह ये ख़त जनाब आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाए। ये कैसा इश्क है, अब ज़रा सुनिएगा। तुब्बा अव्वल हिमयरी का बाद में वो मदीने से आगे गया और जाके उसका इंतकाल हो गया। आफ्टर थाउजेंड ईयर्स, 1000 साल बाद, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन मक्का मुकर्रमा में नबी पाक की विलादत होती है, आका की तशरीफ आवरी होती है, नबी पाक 53 साल मक्के में गुजारते हैं, और इस दौरान हजरत मुसअब बिन उमैर साहबी रसूल हैं, उनको प्यारे आका मदीने भेजते हैं कि वहां जाके इस्लाम की दावत दो। मदीने में तो फौरन इस्लाम फैलना शुरू हो गया। उलमा कहते हैं जो इतनी तेजी से इस्लाम मदीने में फैला ना, इसकी बड़ी वजह यह थी जो ये अंसार साहबा थे ना, मदीने वालों को क्या कहते हैं अंसार, मक्के वालों को क्या कहते हैं मुहाजरीन, तो जो अंसार थे ना ये सारे उस उन्हीं 400 उलमा की औलाद में से थे। दे वर वेटिंग फ्रॉम लास्ट 1000 ईयर्स फॉर रसूल पाक अलैहिस्सलाम, ये तो 1000 साल से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हजरत मुसअब बिन उमैर पहुंचे, दीगर मुबल्लिगीन पहुंचे, अल्लाह के रसूल की बातें बताई, इस्लाम की बातें बताई, धड़ाधड़ लोग इस्लाम कबूल करने लग गए। अच्छा, अब कबीले के लोग बैठे के आखिरी नबी तो आ गए मक्के में, हमारे पास एक लेटर है, अब वो पहुंचाना है उन्हें। उन्होंने मशवरा करके, एक साहबी थे उनका नाम था हजरत अबू लैला अंसारी रहमत रदी अल्लाह तआला, उनको कहा कि आप जाइए, जाके मक्के में नबी पाक को ये खत देकर आइए। उन साहबी ने ट्रैवल किया, जब वो ट्रैवल करके जाने लगे तो उनको किसी ने बताया कि नबी पाक मक्के से पहले एक वादी में बैठे हैं साहबा इकराम के साथ, जलवा फरमाएं। अच्छा, इन्होंने नबी पाक को नहीं देखा, नबी पाक ने इन्हें नहीं देखा, सोशल मीडिया का जमाना तो था नहीं ना कि किसी तरीके से देख लेते। अच्छा, ये गए उस दरबार में, जैसे ही दाखिल हुए कमरे में, नबी पाक साहबा के साथ बैठे हैं, वो कमरे में दाखिल हुए, प्यारे आका फरमाते अंता अबू लैला, तुम अबू लैला हो। वो शॉक्ड हो गए कि मेरा नाम कैसे इनको पता चल गया। कहा जी या रसूलल्लाह, मेरा नाम ही अबू लैला है। फरमाया तुम्हारे पास मेरी एक अमानत होगी, मुझे वो खत दे दो। एक बार और हैरान हो गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने बताया नहीं, पहले इनको पता है। नबी पाक ने वो खत लिया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक को वो खत दिया और कहा अबू बकर पढ़ो। अब भरे दरबार में वो इश्क वाला खत पढ़ा गया है, तुब्बा अव्वल हिमयरी का वो इश्क की जो लेटर था वो पढ़कर सुनाया गया कि हुजूर मैं आपका उम्मती, मैं आपका गुलाम, मुझे कयामत के दिन भूलिएगा नहीं, अगर आपका जमाना पाया तो आपकी खिदमत करूंगा, जमाना ना पा सका तो फिर भी मैं आपका गुलाम हूं। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने भी खत सुना ना तो पता क्या फरमाया, मरहबन अखिस साले, मरहबन अखिस साले, मेरे नेक भाई को मरहबा हो, नेक भाई को मरहबा हो। अमीर प्यारे आका अली सलाम ने उस बादशाह को नेक भाई कहकर पुकारा। अच्छा, अब अबू लैला अंसारी तो हैरान परेशान, नबी पाक पर कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए कि इनको मुझसे पहले पता है कि ये मेरे दिल में क्या है और मैं क्या लेकर आया हूँ। वापस गए, अपने शहर वालों को बताया कि भाई मैं तो उनसे मिलकर आया हूँ जो तो गैब की खबरें देते हैं। अच्छा, बहरहाल अब नबी पाक ने मक्के से मदीने सफ़र इख्तियार किया। अच्छा, मदीने वालों को इंतज़ार तो बड़ा था कि प्यारे आका मदीने आएंगे। अच्छा, नॉर्मली 7 डेज का ट्रैवल होता था, अगर मक्के से कोई ऊँटों पर या घोड़ों पर निकलता था ना, इट्स टेक ऑलमोस्ट 7 डेज टू ट्रैवल। आप आजकल तो हम 4 घंटे में पहुँच जाते हैं, बड़े अच्छे रोड बन गए। अब नबी पाक जब रवाना हुए तो वो न्यूज़ मिल गई मदीने वालों को, लेकिन आपको पता है कि वो हिजरत का सफ़र एबनॉर्मल सफ़र था, नॉर्मल सफ़र नहीं था, बड़े प्रॉब्लम्स थे, बड़े हर्डल्स थे। 3 दिन 3 रातें तो नबी पाक को गारे सौर में रहना पड़ा, रास्ते में मक्के के लोग इंटरसेप्ट करने पहुंचे हुए थे। तो अब मदीने वाले समझ रहे थे कि 7वें दिन नबी पाक आ जाएंगे, वो डेली मदीने के गेट पर जाके खड़े हो जाते कि नबी पाक आ जाएंगे, सुबह जाते वेट करते, दोपहर होती तो वापस आ जाते, अगले दिन फिर सुबह जाके खड़े हो जाते, रोज़ इस्तकबाल की तैयारियाँ हैं। अच्छा आपको मालूम है नबी पाक अलैहिस्सलाम किस दिन मदीने में दाखिल हुए? काफी काफी दिन लगे, मगर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस दिन मदीना मुनव्वरा में सहाबा के झुरमट में दाखिल हुए ना, वो दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन था। हाँ, वो दिन भी बर्थडे ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम था। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान देखें कि रबीउल अव्वल का, 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है, अल्लाहु अकबर, मेरे आका जो मदीने में दाखिल हुए तो सहाबा भी हैं और खुद प्यारे आका भी हैं, बल्कि एक सहाबी कहते हैं हुजूर बगैर परचम के कैसे दाखिल होंगे, आप जा रहे हैं तो शान और शौकत के साथ दाखिल होना है। अपना इमामा उतारा, तलवार पे लगाया, उसे परचम बनाया और जब मदीने में दाखिल हुए तो हर तरफ से सदाएं हैं मरहबा या रसूल अल्लाह, बच्चियां तैयार होकर आई हैं, बच्चे तैयार होकर आए हैं। अरब के लोगों का दस्तूर था, जब कोई बड़ा इवेंट होता था वो अपना मखसूस लिबास पहनते थे, अपनी तलवारें लगाते थे, बल्कि अब भी अगर आप देखिए उनके त्योहारों में उनके लिबास अलग होते हैं, वो सब अपने उस लेवल के लिबास पहनकर खड़े थे क्योंकि आज उनके लिए ईद का दिन था। और सुभान अल्लाह, उस वक्त बनू नजार की बच्चियों ने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो इस्तकबाल किया, जिस नगमे को गुनगुनाकर, जिस नात को पढ़कर उन्होंने इस्तकबाल किया, आज भी मक्के मदीने चले जाएं, कैसेट की दुकानों पर जाएं, बल्कि दुनिया के किसी कोने में जाएं, ये नात अरबी हो, अजमी हो, अफ्रीकन हो या अमेरिकन हो, सरकार की यह नात दुनिया भर में पढ़ी जाती है। और वो बच्चियों ने, उन बच्चियों ने ये नात पढ़ी थी जो आज सीरत की किताबों में भी लिखी हैं। और उन्होंने इस्तकबाल कैसे किया था, वो अल्फाज क्या थे? वो अल्फाज थे तौला अल-बद्रु अलैना मिन थनियातिल वदा वजब शुक्रु अलैना मा दा लिल्लाहिदा। क्या कहती हैं, हम पर चांद तुलू हो गया है, तलअल बद्रु अलैना, चौदहवीं रात का चांद तुलू हो गया है। कहां पर? सनियतुल वदा की घाटी में, जिस जगह ये इस्तकबाल हुआ ना, उस इलाके को सनियतुल वदा कहते हैं। और वजह बस शुक्र अलैना, हम पर वाजिब हो गया है अल्लाह का शुक्र अदा करना। मा दा लिल्लाहि दा, जब तक लोग अल्लाह के लिए दावत देते रहेंगे, यानी कयामत तक हम पर अब ये शुक्र अल्लाह का वाजिब हो गया कि नबी पाक हमारे मदीने आ गए हैं। आपको पता है मदीने के रंग कैसे बदला, मदीने की तकदीर कैसे बदली? मदीना पहले यसरब कहलाता था, वहां की आबो हवा में बीमारियां थीं, जो जाता बीमार हो जाता था। अल्लाह अकबर, मुस्तफा करीम के कदम तो क्या लगे, मदीने के गुबार में भी शिफा हो गया है। अब तो बीमार को कहते हैं ठीक होना है तो मदीने हो आओ, हैं? जब से कदम लगे हैं रिसालत माब के, जब से कदम लगे हैं रिसालत माब के, जन्नत बना हुआ है मदीना हुजूर का। क्या कदम लगे मेरे आका के, भागी जाग गए मदीने वालों के। अच्छा, अब प्यारे आका जब मदीने शरीफ में एंटर हुए ना, एवरीबडी वॉन्ट टू वेलकम एंड एवरीबडी वॉन्ट टू होस्ट हिम, हर बंदा चाह रहा था कि नबी पाक हमारे घर आ जाएं, क्योंकि इश्तियाक बहुत था, तड़प बहुत थी। तो नबी पाक ने फरमाया कि मेरी जो ऊँटनी है ना, ये अल्लाह के हुक्म से बंधी हुई है, ये जिधर जाके रुकेगी उधर जाकर ही मैंने रहना है। अच्छा, अब जरा तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि वो ऊँटनी मदीने की गलियों में घूम रही होगी और हर सहाबी ये इमेजिन कर रहा हो, काश मेरे दरवाजे पर रुक जाए, काश मेरे दरवाजे पर रुक जाए। मगर भाग किसके जागे? सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, कि वो ऊँटनी जो है उनके दरवाजे पर जाके रुकी। अच्छा, एक और अमेजिंग बात शायद बहुत सारों को पहली बार पता चलेगी, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक लकब है, हम सब कहते हैं मेज़बान रसूल, ठीक है ना, लेकिन शायद लोगों को नहीं पता कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी उसी आलिम दीन की औलाद से हैं कि जिनको तुब्बा अव्वल ने लेटर दिया था, जो सबसे बड़े आलिम थे ना, ये उन्हीं की औलाद में से हैं। और हजरत अबू अय्यूब अंसारी उसी घर में रहते थे जो घर तुब्बा ने नबी पाक के लिए गिफ्ट के तौर पर बनाया था। गोया मतलब ये बना कि ये घर नबी पाक का ही था, हजरत अबू अय्यूब अंसारी उसको टेक केयर कर रहे थे। आका किसी के मेहमान न बने, बल्कि सच्ची बात यह है कि मेजबान नबी पाक थे, मेहमान अबू अय्यूब अंसारी थे। और ये कैसे हो सकता है कि नबी पाक जिनके सदके ये कायनात बनी है? इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत बड़ा कमाल का शेर लिखते हैं, आप फरमाते हुजूर ये कायनात जब आपके लिए बनी है, आपकी वजह से बनी है, तो फिर सारा जमाना तो इसमें मेहमान हुआ ना, असल मेजबान तो आप हैं। आप कहते हैं आसमां खान जमीन खान जमाना मेहमान, आसमां खान जमीन खान जमाना मेहमान, साहिबे खान
नाला कब किस का है तेरा तेरा साहिबे खा नाला कब किस का है तेरा।
अब ये इश्क वाली दास्तान सीखने को क्या मिल रहा है कि ये शान है मेरे मुस्तफ़ा की कि दुनिया में आए नहीं हैं मगर चाहने वाले मौजूद हैं, दीवाने मौजूद हैं, सरकार पर सब कुछ निछावर करने वाले मौजूद हैं। जभी तो शायर कहते हैं एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है।